प्रेम निरूपण पृष्ठ 34 यूसुफ जुलेखा की प्रेम कहानी कुरान शरीफ पर आधारित है, जो इस्लामी धर्म दर्शन से बहुत गहराई के साथ संबद्ध है। सूफी साधनों का पारस स्पर्श पाकर इस कहानी का प्रेम तत्व 12 बानी का सोना बन गया है। यद्यपि इस कहानी में प्रगाढ़ प्रेम तत्व का समावेश फारस के सूफी संत जामी और अलग जाली आदि ने किया था, पर शेख निसार की रचनात्मक प्रतिभा ने उसे और भी अभिनव रूप रंग दिया है। लौकिक प्रेम की पवित्र भाव भूमि पर ले जाकर उसे वासना मुक्त करने और अंततः उसे ईश्वरीय प्रेम में परिणत करने में जैसी सफलता शेख निसार को मिली है, वैसी इस परंपरा के किसी अन्य सूफी कवि को नहीं प्राप्त हो सकी। यूसुफ जुलेखा में प्रेमोदय स्वप्न दर्शन से दिखाया गया है। जुलेखा ईश्वरीय गुणों एवं सौंदर्य के प्रतीक यूसुफ को स्वप्न में देखकर उस पर अनुरक्त हो जाती है। यहीं से जुलेखा के हृदय में प्रेम अंकुर प्रस्फुटित होता है। सोवे लागी तेही समय जुलेखा, यूसुफ कहा सपने मह देखा, मीठी नींद सबे लग सोवा, प्रेम बीज हे जामह गोवा, भान स्वरूप तह आए गए, देख रहे टकलाए, लीन प्राण तीन काढ़ के, रूप अनूप दिखाए। स्वप्न भंग होने पर वह व्याकुल हो उठती है। प्रेम फंद अरुझाने गई ज्ञान मति भूल, सवर रूप अकुलाए मन उठे हिये महसूल। जुलेखा के प्रेम की प्रगाढ़ता के लिए कवि 3 बार स्वप्न दर्शन का सहारा लेता है। प्रथम स्वप्न में जुलेखा का ध्यान स्वप्न प्रेम में लग जाता है। द्वितीय स्वप्न में यूसुफ भी जुलेखा को अपनी प्रीति का विश्वास दिलाता है। कहा कि असमोहि उपजयो सोगु, तुम हते अधिक सो बिरह वियोगु, तुम पर कौन बिथा असबीति, हो जस सहो सो प्रेम प्रीति, तोरे बिरह भयो अज्ञाना, छाण्यो देश और नगर अपाना, तोरे लाग भयो परदेसी, मिला न कोई प्रेम संदेसी, सो तुम मोहि भुलावहु नाही, राख्यो प्रीति सदा हे माही, मोहि भूल्यहु जिन प्यारी, और सब रहु दिन रैन, करो सदा वैराग चित, तब पावहु सुख चैन। और तृतीय स्वप्न में जुलेखा को स्वप्न प्रे का परिचय प्राप्त होता है। उसे विश्वास हो जाता है कि उसका प्रे मिस्र देश के सुल्तान का वजीर है। वह प्रेम मिलन का दृढ़ निश्चय कर लेती है। प्रेम उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। जीव तो जाऊं मिस्र कह, मरू तो मारग माह, छार हों उड़ी जाऊं अब, जहां बसे मोरनाह। यूसुफ के प्रेम में प्राप्त लोक निंदा तथा उसके द्वारा परित्यक्त होने पर भी जुलेखा कोई परवाह नहीं करती। यूसुफ की प्राप्ति हेतु वह 40 वर्ष की दीर्घ अवधि तक तपस्या करती है। वह मन वचन और कर्म से यूसुफ में लीन हो जाती है। धन ऐश्वर्य और रूप सौंदर्य खोकर जुलेखा असमय वृद्धा हो जाती है। उसकी नेत्र ज्योति चली जाती है। फिर भी वह लकड़ी का सहारा लेकर यूसुफ को खोजती रहती है। 40 बरस जोग जिन कीन्हा, दरब भंडार खोए सब दीन्हा, और रोवत नैन भये अंधियारे, रोम रोम तन विरहन जारे, जब लही नैन हुते वह केरे, तब लही दरस प्रीत महि हेरे, गए नयन भई रंक भिखारी, बिरह स्वरूप भई वह नारी, कुबर निक्सी पीठ मह आवा, बक्र अंग भासुध सुहावा, लय लकुटी हेरत फिरे, नित यूसुफ के बाट, जो कोई नाव सुनावे, भूई मह धरे लिलाट। उसके जैसा पुनीत प्रेम अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। यूसुफ से मिलने के प्रति आशान्वित वह तड़पती है। अंततः 40 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद जुलेखा का यूसुफ से मिलन होता है। दोनों का शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न होता है। सुन यूसुफ सिरनाई के कीन व्याह कैचार, बाजे लाग जो नौबत नाच गौड़ झंकार। जो कुछ होत ब्याह के चारा, सो सब कीन राग रंग सारा। सुफल घरीमा व्याह सुहावा, दुखिया दान दरब बहु पावा। इस प्रकार जुलेखा की प्रेम भावना प्रारंभ से ही सर्वथा एकांतिक है। यूसुफ से परिचय होने पर जुलेखा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करता है। जुलेखा के प्रेम और विरह का यूसुफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जुलेखा के दास के रूप में रहकर उसके सौंदर्य और प्रेम चेष्टाओं के प्रति क्षण भर के लिए आकर्षित होता है। उसका प्रेम जुलेखा की भांति एकांतिक नहीं है। वह कर्तव्य भावना से बंधा रहता है और उस क्षणिक आसक्ति का दमन कर देता है। यहाँ यूसुफ का चरित्र को अत्यंत संयत रूप में अंकित है, क्योंकि इस्लाम धर्म अंतर्गत यूसुफ महापुरुष के रूप में माने हैं। अतः साक्षात्कार से पूर्व ही यूसुफ में काम चेष्टा का होना महापुरुष की गरिमा के अनुरूप न होता। जुलेखा के प्रति यूसुफ का प्रेम भी अगाध है। यही वजह है कि जब जुलेखा सांसारिक से विरक्त होकर अलख में लीन हो जाती है, तो वह जुलेखा की अलख साधना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देता। उसे अपने पुत्रों तथा अन्य सांसारिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए भी यथेष्ट प्रयत्न करता है। फिर भी संपूर्ण कथा में जुलेखा का प्रेम अधिकाधिक मुखरित हुआ है। प्रेम को आगे बढ़ाने का सारा प्रयत्न उसी के द्वारा होता है। यूसुफ का स्वरूप अत्यंत संयत तथा मर्यादित है। यद्यपि वह लोक व्यवहार की सर्वथा उपेक्षा नहीं कर पाता, अपने भाइयों तथा पिता के प्रति व्यवहार भी रखता है, पर है वह अद्भुत और पराकोटि का। शेख निसार द्वारा वर्णित प्रेम तत्व यद्यपि अपने स्वरूप में सूफी प्रेम दर्शन से शक्ति ग्रहण करता है और उस पर सूफी साधक जामी के यूसुफ जुलेखा का गहरा प्रभाव है, तथापि इस प्रेम का आरंभ जुलेखा पक्ष से दिखाया जाना और प्रेम को प्राप्त करने का संपूर्ण उपक्रम भी उसी के ओर से अंकित करना सूफी प्रेमाख्यान परंपरा से भिन्न है, क्योंकि वहां प्रेम उद्भव और उसे प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव नायक की ओर से दिखाया जाता है। इस रूप में यूसुफ जुलेखा भारतीय प्रेमाख्यान परंपरा से बहुत दूर तक प्रभावित है। वियोग। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा का वियोग अत्यंत कारुणिक है। उसका संपूर्ण जीवन वियोग सिंधु में डूबा हुआ है। संयोग के क्षण उसके जीवन में अल्प समय के लिए आते हैं। जुलेखा को वियोग का प्रथम अनुभव स्वप्न में यूसुफ को देखकर होता है। वह विमोहित हो जाती है, परंतु स्वप्न टूटने पर वह यूसुफ को नहीं पाती। परिणामतः उसमें अकुलाहट और बेचैनी व्याप्त हो जाती है। वह यूसुफ का बार बार स्मरण कर अश्रुपात करती है। उसका रोम रोम विरह बाण में बिंध जाता है। उसके हृदय में विरह अग्नि सुलगने लगती है। जब संवरे मुख तब बिलखाई, पै सुलाज दे रोय न जाई। विरह बाण बेधा एक बारा, रोम रोम व्याकुल तेहि छारा। चिनगी बिरह आगि कै लागी, सुलगे लाग हे मह आगी। उसकी अकुलाहट इतनी बढ़ जाती है कि उसे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रह जाता। सखिन देख धन बदन मलीना, मन व्याकुल तन सुदबुदहीना। वह वियोगावस्था में कभी पागलों की तरह अपने वस्त्रों को फाड़ने लगती है, कभी उठकर घर से भागने लगती है और कभी अपने ही शरीर को काटने लगती है। भई बाउर तन सुदबुद्ध त्यागी, चाहा जायसु घर से भागी। प्रेम पीड़ते भई अधीरा, होए व्याकुल तन फारे चीरा। उठी उठी चले छाणी घर मारा, तन पर लाग चढ़ावे छारा। विरह की अवस्था में प्रकृति भी बदली हुई दिखाई देती है। विरही मन प्रकृति को दूसरे रूप में देखने लगता है। इसीलिए कवियों ने प्रकृति सौंदर्य में विरही और विरहणी की मनोदशा का चित्रण करने के लिए षड ऋतु वर्णन और बारह मासा की परंपरा चलाई। कवि निसार ने भी वियोग वर्णन की इस परंपरा का निर्वाह किया है। वसंत ऋतु में जब उपवन में फूल खिलने लगते हैं, भौरे गुंजार करने लगते हैं, अनार की डाल पर आग की दाहकता वाले रक्त वर्णी फूल लग जाते हैं, तेसु के फूल तो मानो चारों ओर आग लगा देते हैं, ऐसे वातावरण में विरहणी जुलेखा समझ नहीं पाती कि वह कहाँ जाए। उसे संसार में अपने लिए कोई जगह नहीं दिखाई पड़ती जहाँ उसे शांति मिल सके। फूले फूल सिखी गुंजा रही, लागी आग अनार के डा रही, मैं कार करूं कहाँ अब जाऊं, मो कह नाहीं जगत मह ठाऊं। तेसु फूल जो कीन अजोरा, लागी आग जरे चहु ओरा। जुलेखा की विरह व्यथा इतनी बढ़ जाती है कि वह अहर्निश रोती रहती है। ग्रीष्म ऋतु के भयानक ताप में नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, लता, वृक्ष, फूल पत्तियां सभी सूख जाते हैं। यहाँ तक कि जल बरसाने वाले बादल भी सूख जाते हैं, परंतु उसके नेत्रों के आंसू नहीं सूखते। सूख समुद्र गए रवि तेज सो, सूख गई सलिता जलधारी, सूख गए पहुमि रवि मंदिल, सूख गए जल मेघ सुखारी, सूख ही कूप तड़ाग लता द्रुम, बेल बली बन ओ फुलवारी, सेख निसार आए विरहानल, सूखे न हो ई, रिपीट, सूखे न ई अखियां दुखियारी। वियोगिनी जुलेखा के हृदय को शरतकालीन निर्मल चांदनी व्याकुल बना देती है। शरतकालीन चांदनी उसे विरह बाण सदृश लगती है और वह विरह अग्नि में जलने लगती है। ऐसी दशा में उसके जीवित रहने में संदेह होता है। शरद चांदनी निर्मल देखा, भा अब हमार बाउर कर लेखा, और लाग विरह कै बाण जरे विरह की अग्नि सो, के ही विधि बचे प्राण, शरद चांदनी चित दह। विरहणी जुलेखा को हेमंत ऋतु की रात्रि पहाड़ के सदृश प्रतीत होती है। रात्रि व्यतीत करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। निसहेवंत पहाड़ भय बिनु पियु कटै न रैन, जाग बिहाऊं रैन दिन जाड़ करे बेचैन। इसी प्रकार बारह मासा के अंतर्गत बारहों महीने जैसे जैसे आते हैं, विरह आकुल जुलेखा की दशा बिगड़ती चली जाती है। चैत का सुहावना मास आने पर जब वन वन हरे भरे होकर पुष्पित हो जाते हैं, तब वियुक्त जुलेखा रक्त से आंसू बहाती है। चैत मास पियो गयो विछोई, तब तें रकत आंसू में रोई। शरीर को सुख प्रदान करने वाली शीतल वायु उसे जलाने लगती है। शीतल पवन अंग कह भावे, विरहिन को तन अधिक जरावे। वैशाख मास का सुखद वातावरण भी विरहणी जुलेखा के लिए अत्यंत कष्टप्रद हो उठता है। इसीलिए वह कहती है कि लोगों के लिए यह ऋतुराज है, सुख सोहाग का समय है, पर मुझे तो यह दुख से नष्ट कर रहा है। न जाने किस लिए इसका आगमन हुआ है। सुख सुहाग के समय यह, लोग कहें ऋतुराज, हमें नष्ट दुख दे यह, आवे कौने काज। इसके पश्चात ज्येष्ठ का महीना आता है। जेठ देह को जलाने लगता है, परंतु नेहवती नारी सुखी रहती है। उसे सभी दिशाओं में स्नेह अधिक के दिखाई पड़ता है। किंतु विरहणी जुलेखा के लिए सब कुछ दारुण सिद्ध होता है। जेठ जरा वे देह नेह बाह नारी सुखी चहुं दिस बढ़या स्नेह बिरहिन कै दारुण लागे। वह गुप्त और प्रकट रूप में रात दिन जलती रहती है। गुप्त प्रगट एक पेव बिन बिरहिन निस दिन जरे। जुलेखा के लिए प्रे के बिना बादलों से भरी असाढ़ की अंधेरी रात बिताना कठिन हो जाता है। घटाओं और बिजलियों को देखकर उसका हृदय कांपने लगता है। कैसे कटे सो यह ऋतु भारी बिन पियो घमंड घोर अधियारी मास असाढ़ सुहावने मन भावन न सेज देख घटा और दामिनी कांपे मोर करेज। जाड़े की रात के साथ उसका विरह और भी बढ़ जाता है। बाढ़ा विरह रैन जस बाढ़ है अरुझे प्रेम फांस हे गाढ़ है। इस प्रकार प्रकृति का सुखद वातावरण जुलेखा की भावना को तीव्रतर बनाता है। वहां प्रकृति का उदास और निर्मल रूप उसे सहानुभूति प्रदर्शित करता प्रतीत होता है। यूसुफ जुलेखा में संयोग श्रृंगार का अवसर कवि को प्रायः नहीं मिल सका है, क्योंकि दोनों का मिलन होते ही जुलेखा में नया परिवर्तन आ जाता है। अपना संपूर्ण जीवन यूसुफ के वियोग में तड़पते हुए बिता देने वाली जुलेखा को यूसुफ से मिलन के बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसने जितना समय मनुष्य के प्रेम में गंवाया उतना प्रेम यदि उस परमात्मा से किया होता तो उसे मुक्ति मिल गई होती। इस आत्मज्ञान के साथ वह यूसुफ से पुनः अलग हो जाती है। इस प्रकार जुलेखा का संपूर्ण जीवन यूसुफ के विरह में तड़पते हुए बीतता है। वियोग की जिस स्थिति को जुलेखा प्रेम मिलन की आशा में गुजारती है वह वास्तव में उसके प्रेम को खरा सिद्ध करने की कसौटी है।